आरव माहिरा के साथ दुबई में था। माफिया वॉर से जुड़े किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के चलते उसे वहां आना पड़ा। मीटिंग के बाद आरव माहिरा के साथ उसके घर पर आ गया, जहां दोनों साथ में डिनर के बाद वाइन पी रहे थे। माहिरा ने ग्लास आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज छवि सिंघानिया का चेहरा देखा तुमने? एजाज खान ने उसकी एक नहीं सुनी। पिछली बार उसने हमारी रिलेशनशिप पर जो सवाल उठाए थे, उसके बाद से ही वो उससे चिढ़ा हुआ है। हाँ, और हमारे मिनी वेकेशन के बाद खान के आदमियों को श्योर हो गया कि हम वाकई रिलेशनशिप में हैं, आरव ने हल्का हंसकर जवाब दिया। माहिरा ने उसकी बात पर हामी भरी, पर आरव की बातों से उसका चेहरा उतर गया था। कुछ पल रुककर माहिरा ने मायूसी से कहा, क्या ये सच नहीं हो सकता? मतलब क्या सच नहीं हो सकता? तुम किस बारे में बात कर रही हो माही? आरव ने हैरानी जताते हुए पूछा। तुम अच्छे से जानते हो आरव मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, माहिरा ने जवाब देते हुए कहा। आरव, मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, क्या ये दिखावा सच नहीं हो सकता? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता माही, यू नो वेल मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं हैं, बोलते हुए आरव ने माहिरा का हाथ पकड़ा और आगे कहा, तुम मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मैं उस मुकाम पर था जहां मेरे पास सब कुछ होकर भी दिल में सुकून नहीं था, फिर मुझे तुम मिली। बचपन से मेरे दिल में छवि सिंघानिया से बदला लेने की जो आग पल रही थी, वो तुमने ही शांत की। बिजनेस में मैंने उसे मात दे दी थी, लेकिन साथ ही वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थी, तो मैं हर तरीके से उसे नहीं हरा सकता था। ऐसे में तुमने मेरा पूरा साथ दिया। उसने जो भी किया उसके बाद मेरा लड़कियों पर तो छोड़ो, किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता था। ऐसे में तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में चीज़ें बदली। आरव जो भी कह रहा था वो सच था। छवि के धोखे के बाद गौरवी जी के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई औरत मायने नहीं रखती थी, लेकिन माहिरा ने उसकी सोच को बदला। आरव के दिल के जज्बात सुनकर माहिरा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने जवाब में कहा, हाँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी, पर डील याद है ना, तुम मुझे प्यार ना करो चलेगा, लेकिन किसी और के लिए भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बननी चाहिए। माहिरा की बात सुनकर आरव एक पल के लिए चुप हो गया। पहले जब भी माहिरा इस तरह की बात कहती थी तो वो बिना झिझके हाँ कह देता था, पर आजकल उसके दिल में कोई और दस्तक देने लगा था। तुम भी ना, कौन सी बातों को लेकर बैठ गई, रात काफी हो गई है, कल मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, हमें अब सो जाना चाहिए, कहकर आरव उठकर जाने को हुआ। तभी माहिरा उसके पीछे आई। माहिरा ने आरव का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ओ शिट, इतनी सारी बातें कर ली पर सबसे जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात? आरव ने माहिरा की तरफ देखकर पूछा। मुझे तुम्हारे 45 डेज चाहिए। एक्चुअली डैड मुझे मेरे न्यू असाइनमेंट के लिए भेजना चाहते हैं। सब कुछ काफी सीक्रेटली होगा तो मोबाइल तक रखना अलाउ नहीं है। सोचो मैं 6 महीने तुमसे बात किए बिना बिताऊंगी, ऐसे में अगर तुम्हारे 45 दिन ले भी लिए तो क्या हो जाएगा? माहिरा ने एक सांस में उसे सब बता दिया। लेकिन मेरा बिजनेस और दादी, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, आरव को ना कहने के लिए जो भी समझ आया उसने बोल दिया। माहिरा आरव के पास आई और उसका नाक पकड़कर कहा, डोंट वरी, मैंने सब कुछ पहले ही सेटल कर लिया है, कबीर ने ऑलरेडी सब संभाल लिया है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए इस बारे में नहीं बताया। आरव ने माहिरा से कुछ नहीं कहा, बस जवाब में मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, इस कबीर की तो इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आरव अपने ख्यालों में खोया था, तभी माहिरा उसके करीब आई और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे काफी इंटेंसली किस कर रही थी। आरव उससे अलग होना चाह रहा था लेकिन माहिरा काफी डीपली खोई हुई थी। अचानक आरव उससे अलग हुआ और कहा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यू नो आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, बोलकर आरव गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देख माहिरा मुस्कुराकर बोली, अक्सर लड़कियों को ये इशू रहता है पर तुम अलग हो। आरव उसकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। कुछ ही देर बाद दोनों अलग अलग बेडरूम्स में थे। आरव बिस्तर पर लेटा आयु के बारे में सोच रहा था। उसने खुद से कहा, 45 डेज, इतना लंबा वक्त मुझे तुम्हारे बिना बिताना होगा। कहा, मैं सोच रहा था कि हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा, पर अब सब उल्टा हो रहा है। जो भी हो, इन सब में एक बात अच्छी होगी कि 6 महीने तक माहिरा मुझसे दूर रहेगी, सोचते हुए आरव को नींद आ गई। दूसरी तरफ आयु मंथन के घर से वापस आ चुकी थी। वो अपने कमरे में थी और आज पूरे दिन में जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। रात के लगभग 3 बजे के करीब आयु ने अपना मोबाइल उठाया और रोहन को कॉल किया। रोहन सो रहा था लेकिन मोबाइल की रिंग से उसकी नींद टूटी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर आयु का नंबर फ्लैश होते देखा तो तुरंत कॉल पिक करते हुए कहा, लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर आयु ने आईज रोल करके कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो भी किया उसके बाद मुझे नींद आएगी? मुझे तुमसे कुछ जानना है। हाँ, रात के 3 बजे ही तुम्हें सवाल जवाब पूछने थे। तुम्हें मैंने अब तक जो बताया था वो काफी था, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। पूरी बातें जाननी है तो तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कहनी होगी। लोकेशन भेज देता हूँ, सुबह 6 बजे पहुंच जाना, कहकर रोहन ने कॉल कट कर दिया। उसने आयु के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। वहीं उसके अचानक कॉल कट करने पर आयु गुस्से से मोबाइल को देख रही थी। उसने वापस रोहन को कॉल लगाया तो उसका फोन बंद जा रहा था।
हद है, इसे मेरी जरूरत है और मुझे ही भाव दिखा रहा है। एक तो मुझे ऐसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रहा। बोलते हुए आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने गुस्से को शांत करने लगी। कुछ देर बाद उसने सामान्य स्वर में कहा, जो भी हो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी आरफ खुराना। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है भी या नहीं। आयु ने अपना डिसीजन ले लिया था, वो रोहन को ट्रेनिंग के लिए हाँ कहने वाली थी। उसने 5 बजे का अलार्म सेट किया और सोने चली गई। 2 घंटे की नींद के बाद अलार्म की आवाज के साथ आयु की नींद टूटी। वो जल्दी से तैयार हुई और रोहन को कॉल करने को हुई। रोहन उससे पहले ही लोकेशन भेज चुका था। पता नहीं ये हमेशा इतना शोर क्यों रहता है, जैसे पहले से जानता हो कि मैं ट्रेनिंग लेने आऊंगी, आयु ने हैरानी के साथ कहा और फिर रोहन की बताई जगह के लिए निकल गई। रोहन ने आयु को जिस जगह की लोकेशन भेजी थी वो मुंबई के आउटसाइड एरिया में बना कोई ट्री हाउस था। आयु अंदर गई तब रोहन के साथ वहां जहान भी था। जहान को वहां देखकर आयु सरप्राइज हो गई। उसने हैरानी से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने ही इसे यहां बुलाया था, रोहन ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसके साथ कंफर्टेबल थी तो यही तुम्हें ट्रेनिंग देगा, पर मेरे हिसाब से तुम्हें मेंटली स्ट्रांग करने के लिए मैंने एक साइकाइट्रिस्ट हायर की है। लेकिन ये जगह काफी दूर है, मेरा आना जाना पॉसिबल नहीं होगा। हॉस्पिटल होता है, मेरी खुद की क्लासेस होती हैं, बाकी सब चीजें भी, आयु बोल रही थी तभी रोहन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अगले 1.5 महीने तक तुम यहीं पर रहोगी। घर पर जो भी बहाना बनाना है बनाओ, हॉस्पिटल से रिजाइन कर दो, वॉट एवर यू डू, बट तुम यहीं पर रहोगी। और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने एक लड़की को हायर किया है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, तुम्हारी डाइट और बाकी चीजों का ध्यान रखेगी वो। लेकिन तुम अकेले ही कैसे सब कुछ डिसाइड कर सकते हो? ये मेरी लाइफ है, मैं मेरे डिसीजन लेने का हक किसी को नहीं देती, आयु ने चिढ़ते हुए कहा।
अब से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रही, तुम सब कुछ मेरे हिसाब से करोगी, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। तुम्हारा जरूरत का सामान यहाँ पहुँच जाएगा, और हाँ, तुम वीकेंड पर बाहर घूमने जा सकती हो। तुम्हें रात को सोते वक्त बस 1 घंटे मोबाइल चलाने की इजाज़त होगी, रोहन ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा। आयु को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। रोहन ने जहान की तरफ देखा और कहा, हर एक तरह की ट्रेनिंग दो, मैं नहीं चाहता कि ये किसी भी मामले में कहीं भी वीक पड़े। जहान ने उसकी बात पर हामी भरी। उन्हें सब कुछ समझने के बाद रोहन वहां से जा चुका था। रोहन के जाते ही जहान ने आयु से कहा, तुम क्या सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन करने वाली थी इसलिए ट्रेनिंग ले रही थी, पहले बता देती। आयु ने जहान के बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच रोहन जिस लड़के की बात कर रहा था वो वहां पहुंची। वो आयु की असिस्टेंट की तरह थी जो उनकी एजेंसी में काम करती थी। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी और उसका नाम फलक था। लगभग 1.5 महीने बाद देखते ही देखते 45 दिन बीत गए और जिस काम के लिए आयु को तैयार किया जा रहा था वो उसमें कोई तरह परफेक्ट हो चुकी थी। जहान ने उसे फिजिकल ट्रेनिंग देकर फिट किया तो फलक ने इसमें उसका पूरा साथ दिया। रोहन की अपॉइंट की हुई साइकाइट्रिस्ट ने आयु को मेंटली स्ट्रांग किया था। आयु का कॉन्फिडेंस लो ना हो इसलिए बीच बीच में रोहन कुछ ना कुछ आरव के खिलाफ ऐसा बताता रहा जिससे आयु का उससे बदला लेने का जज्बा और भी बढ़ता रहा। 45 दिन पूरे होने के बाद रोहन और आयु ट्री हाउस के कमरे में थे, उनके साथ में फलक भी थी। मैंने तुम्हें हर तरह से तैयार किया है, मैं नाकामयाबी की कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, रोहन ने सख्त आवाज में कहा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। वो वहां से जाने को हुई तभी रोहन ने पीछे से कहा, कई बार बदले लेने के रास्ते बिस्तर तक होकर भी गुजरते हैं, तुम वहां से भी पीछे नहीं हट सकती। रोहन की बात सुनकर आयु ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और जवाब में कहा, उसकी नौबत मैं कभी नहीं आने दूंगी। अपनी बात कहकर आयु वहां से चली गई। उसके जाते ही रोहन ने फलक से कहा, इस पर एनी टाइम नजर रखना, हमारा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता वो इसकी वजह से बर्बाद हो। बिल्कुल नहीं होगा सर, ट्रेनिंग के दौरान मैंने आरा खुराना के खिलाफ कान भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फलक ने जवाब दिया। कुछ पल रोहन रुका और फिर आगे धीमी आवाज में कहा, वीडियो शूट कर लिया था ना? फलक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी मैंने इसके क्लिप ले लिए हैं और उनका यूज कैसे करना है ये मैं उसी हिसाब से एडिट करवा दूंगी। फलक की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक बात तो साफ थी कि उसने अपने फायदे के लिए आयु को ट्रेनिंग दी थी और जरूरत पड़ने पर वो आयु को भी अपने रास्ते से हटाने वाला था। इसकी तैयारी उसने पहले ही कर ली थी।